ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने सही और तथ्यात्मक जानकारी संप्रेषित करके लोकतंत्र में लोगों का विश्वास मजबूत करने की मीडिया से की अपील। सरकार द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को प्रगति के माध्यम के रूप में स्वीकार करने की नीति अपनाई गई है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। प्रदेश संरचनाओं को और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने पर नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने दिया जोर। और भारत यूपी के फिरोजाबाद में बड़ा हादसा, पटाखे के गोदाम में धमाके के कारण 4 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना, मानवाधिकार कानून के शासन और सामाजिक परिवर्तन के लिए देश के सामुदायिक रेडियो द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की है और लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो ब्रॉडकास्ट के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देने के लिए आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि भूकंप और कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में सामुदायिक रेडियो की भूमिका सराहनीय है। राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि सामुदायिक रेडियो नागरिकों को सूचित करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वास्तविकता में अवगत कराते हुए तथ्यात्मक और भ्रामक जानकारी ने सोशल मीडिया के उपयोग के साथ चुनौती बढ़ा दी है। राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि मीडिया को लोगों तक सच्ची जानकारी पहुंचाकर और इसका पूरा उपयोग करके लोकतंत्र में जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाली की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विज्ञान और प्रविधि का उपयोग अपरिहार्य है। 12वें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने सभी से वैज्ञानिक खोज, अनुसंधान और सोच को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार विज्ञान और प्रविधि को रीढ़ और तकनीकी विकास को उत्पादन का मूल आधार बनाकर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विज्ञान और प्रविधि शिक्षा को प्रगति के वाहक के रूप में स्वीकार करने की नीति अपनाई है और विज्ञान और प्रविधि के क्षेत्र में मौजूदा संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण भी उतना ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार ने अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और देश में व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रमों जैसे इनोवेशन फंड, स्टार्टअप फंड के लिए बजट आवंटित किया गया है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि प्रदेश संरचना को और अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। पार्टी के कानून विभाग द्वारा पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आज आयोजित विचार गोष्ठी में सभापति देउवा ने कहा कि बन चुके प्रदेश संरचनाओं को हटाने की स्थिति नहीं है, बल्कि उसे उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने की ओर काम किया जा सकता है। सभापति देउवा ने कहा कि सभी समुदायों को राज्य के शासन प्रणाली में अपनत्व महसूस करने के लिए समावेशी सिद्धांत देश की मौजूदा आवश्यकता है। सभापति देउवा ने कहा कि प्रजातंत्र के खिलाफ कांग्रेस हिमालय नहीं है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने आज सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्व इंद्र यात्रा का अवलोकन किया। राष्ट्रपति पौड़ेल ने जन युद्ध शाली से हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र स्थित गद्दी बैठक तक पैदल जाकर यात्रा का अवलोकन किया। राष्ट्रपति पौड़ेल को काठमांडू महानगरपालिका के उपमेयर सुनीता डंगोल ने यात्रा में स्वागत किया था। इंद्र यात्रा समारोह में राष्ट्रपति पौड़ेल ने गणेश, भैरव और कुमारी रथ में दक्षिणा सहित पूजा अर्चना कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया था। वर्षा और सहकाल के देवता देवराज इंद्र की पूजा आराधना कर आज के दिन मुख्य रूप से इंद्र जात्रा पर्व काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, धूलीखेल, दोलखा लगायत स्थानों में मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन हनुमान ढोका के आगे धार्मिक विधि पूर्वक इंद्र ध्वजा सहित लिंगो खड़ा करने के बाद से प्रारंभ होने वाली जात्रा में विभिन्न प्रकार के नाच गान, रथ यात्रा और देवी देवताओं की पूजा कर 8 दिनों तक मनाने की परम्परा है। आश्विन संक्रांति अर्थात जिस दिन सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, आज के दिन कारीगर विश्वकर्मा की पूजा करके विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं। ये दिन विभिन्न कारखानों में भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियां या तस्वीरें रखकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करके मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिनों कारीगर द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न औजारों का पूजन करने से लंबे समय तक टिके रहने, काम के दौरान न टूटने और अच्छा काम कर लगायत गुण प्राप्त होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि द्वापर युग में राक्षसों द्वारा भगवान कृष्ण को प्रताड़ित करने के बाद विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में भेद द्वारिका बनाई और उसे छिपा दिया। विश्वकर्मा को एक सफल वास्तुकार माना जाता है क्योंकि उन्होंने एक रात में समुद्र के बीच में भेद द्वारिका का निर्माण किया था और तभी से पूजा की परंपरा स्थापित हुई है। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र ग्रंथों के लेखकों और विद्वानों की याद में इस दिन को वास्तु दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि देश में दिखी समस्याओं का समाधान और चुनौतियों का सामना करने के लिए नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले को एक होना पड़ा है। आज काठमांडू में आयोजित नेपाल पर्वतारोहण संघ के 34वें वार्षिकोत्सव समारोह में मंत्री पांडे ने कहा कि मौजूदा समय एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं बल्कि एक होकर देश के विकास में योगदान देने की जरूरत है। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और सरकार के स्थायित्व के लिए संसद के दो बड़े दल का गठबंधन हुआ है। आज नेपाल प्रेस यूनियन कैलाली शाखा द्वारा धनगढ़ी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उप प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि बार बार सरकार परिवर्तन होने से उत्पन्न परिस्थिति को सहज बनाने के लिए नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले को मिलकर सरकार बनाना पड़ा है। मंत्री सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार ने भूकंप, कोरोना महामारी लगायतों के कारण शेष शिथिल बने अर्थतंत्र को पुरानी अवस्था में लाने के उद्देश्य के साथ काम को आगे बढ़ाया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सोमवार की देर रात पटाखे के गोदाम में धमाका होने के कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। ये हादसा फिरोजाबाद के नौशेरा इलाके में हुआ है। ये पटाखा गोदाम एक घर में था। अभी भी घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने सही और तथ्यात्मक जानकारी संप्रेषित करके लोकतंत्र में लोगों का विश्वास मजबूत करने की मीडिया से की अपील। सरकार द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को प्रगति के माध्यम से स्वीकार करने की नीति अपनाई गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। प्रदेश संरचनाओं को और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने पर नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देववा ने दिया जोर। और भारत यूपी के फिरोजाबाद में बड़ा हादसा, पटाखे के गोदाम में धमाके के कारण 4 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।